हर रोज़ आदमी जब घर से निकलता है काम करने के लिए तो एक बहुत ही अंदाज़ उसका मुख्तलिफ होता है। हर रोज़ सुबह आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस हद तक आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो सकती है गुज़श्ता दिन से। ये खुदा ने शायद निज़ाम हम लोगों के लिए ऐसा रखा है ताकि मैं बीच में एक चीज़ बताता चलूँ कि आप जब जाते हैं ऑफिस के लिए या जो भी आपका काम है, आप कोशिश करते हैं कि एक जैसा रास्ता आपका ना हो, हर रोज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए, एक गली ऊपर या एक गली नीचे से चले जाएं, शायद ये रास्ता बेहतर तरीके से हम पहुंच सकें, शायद थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। ये आसान सा रास्ता जो आपको घर से तय करना है ऑफिस तक, इस हद तक आप उसमें तब्दीली चाहते हैं, तो आप ज़िंदगी में तब्दीली हम क्यों ना चाहें। तो इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम भी आपकी मदद करेंगे। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक और भी बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ यहाँ खड़ी है।
बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अजीम शख्सियत का तारुफ करवाया। सलाम अर्ज़ करता हूँ, मैं भी आपकी खिदमत में प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि हसन ने शुरू में कहा कि तब्दीली, मुस्बत तब्दीली क्यों, जी बिल्कुल ज़रूर लानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली। और जितनी ज़िंदगी तब्दील होती रहेगी उतना जो है इंसान को मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात उसको हासिल होते हैं और बारह ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद बनता जाता है। और बिल्कुल अगर आप रिपीट करते रहे बड़ा वो जो है थकावट सी हो जाती है।
इसमें फिज़िक्स में ये होता है, फिज़िक्स के कवानीन में जितने हमारे साथियों ने, जितने हमारे दोस्तों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, उसमें ये होता है कि जो मुख्तलिफ कह सकते हैं कि मखलूकात होती हैं,
सही,
उनकी कोशिश ये रहती है और उनके जो अजसाम जो होते हैं उनका ये रहता है कि जिस हालत में उसी हालत में बाकी रहें।
ठीक है,
अगर किसी चल रहे हैं तो चलते ही रहें और अगर रुके हुए हैं तो रुके रहें। ये फिजिक्स के बिल्कुल इब्तदाई कवानीन में से।
सही,
लेकिन खुदा ने इंसान की खिलकत ऐसी बनाई है कि एक जगह जुमूद का शिकार ना हो जाए,
बिल्कुल,
और आगे तहर्रुक रखे और बेहतरी की तरफ जाए। ये नहीं कि तहर्रुक मनफी चीजों की तरफ जाए बल्कि बेहतरी की तरफ जाए।
तहर्रुक का मतलब ही है इस सेंस में हमें लेना चाहिए कि इंसान अपने आप को बेहतर कर सके। बदतर करना है तो वो तो फिर ठीक है, वो जहां बैठा हुआ है वही बैठा रहे।
बिल्कुल, इसमें एक और छोटा सा नुक्ता भी है, वो ये है कि हमने थोड़े दिन पहले भी बताया था नाज़रीन को कि बास चीजें होती है ऑन डिजाइन और बास चीजें होती है ऑफ डिजाइन। किस चीज़ के लिए बनाया गया है, यानी मिसाल के तौर पर एक जहाज को बनाया गया है उड़ने के लिए, गाड़ी को बनाया गया है चलने के लिए। अब अगर न चले या हर रोज़ आप मैकेनिक के पास गाड़ी को ला रहे हो और वहाँ ले जा रहे हो तो यकीनन ये गाड़ी सही तौर से नहीं चल रही। इंसान को ऐसा बनाया गया है कि सही तौर से चले, बेहतरी की तरफ, अपने हकीकत की तरफ, यानी जो खुदा है उसकी तरफ चले। अगर किसी और रास्ते पर जा रहा है तो यकीनन हम लोगों को सोचना चाहिए।
बिल्कुल सोचना चाहिए, और सोच जो है वो कहते हैं ना, नीयत जो है वो सारा शुरू होती है सारे कामों के लिए। और बहरहाल मैं ये सिर्फ ये बताता चलूँ अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन को, आज हमारा जो है हफ्ते के मौजू का आखिरी दिन है, प्यार मोहब्बत, ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है, अपने घर वालों से मोहब्बत, हमसायों से मोहब्बत और दोस्तों वगैरह से मोहब्बत, उसके बारे में बात कर रहे थे। और ये भी बताता चलूँ आपको कि आज का प्रोग्राम जो है उसमें हमने आपके लिए बहुत सी चीज़ें लाई हैं, जिसमें एक तो हमारे साथ हमारे जो जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अवैस हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे और वो एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। वो ये है कि साफ पानी, गंदा पानी कैसे उसको पता चलाए, जैसे कि कौन सा साफ है कौन सा गंदा है, अगर गंदा पानी पी रहे हैं आप लोग तो उसको कैसे साफ करना है। बहरहाल इस मौजू पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर अतिया निषाद भी दिल्ली स्टूडियो से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे।
तो ये तो बीच में हमें वक्त मिला, हम कुछ चीजें बता दें, काफी हम मेहनत करके लाए हैं।
बिल्कुल, आप क्या लिखे आप भी बता दें जल्दी जल्दी ताकि नाज़रीन जो है वो उठे ना।
बताऊंगा लेकिन मजेदार है, काफी आप लोगों के काम आएगी।
चलें ठीक,
चलें बताते ही चलते हैं कि सफर के बारे में आप सफर कैसे कर सकते हैं। यकीनन सफर के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अगर खास किस्म का सफर करना है तो हमारे साथ रहिएगा। आज प्रोग्राम सुबह जिंदगी में एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाजरीन, आलिम के दोस्त ज्यादा होते हैं और दौलतमंद के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त यानी कहानी थी और ये बहुत ही अहम कह सकते हैं कि मशहूर वाकया भी है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। इसके बारे में कई चीज़ें हैं कि किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। शायद इसका भी हम लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि दौलतमंद के साथ अगर दोस्ती करेंगे कभी भी उसकी दौलत हम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, मगर ये कि आदमी जाके खुदा के यानी गैर खुदा से मांगे तभी हो सकता है उसको फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन इज्जत नहीं रहेगी। और अगर आलिम के साथ दोस्ती हो तो यकीनन आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलते हैं, मैम एक आलिम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही खास शोबे में उन्होंने डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जी बिल्कुल हसन, आपने सही कहा कि हाइजीन जो है उसमें डॉक्टर अवैस जो है वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। बहरहाल मैं नाज़िम की खिदमत में जो है गुफ्तगू सेगमेंट में खुश आमदीद कहता हूँ, डॉक्टर अवैस रजा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू जो चलेगी डॉक्टर साहब के साथ वो पानी के बारे में चलेगी, कैसे साफ पानी, गंदा पानी कैसे उसका पता चलाया जा सके, कितनी अहमियत है साफ पानी पीने की और क्या क्या नुकसान हैं अगर जो है आलूदा पानी पिया जाए। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में और शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाए।
वालेकुम सलाम, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हैसियत से बढ़ के आपने मेरा तारुफ कराया।
जी तो डॉक्टर साहब हम आपने बताया कि आप जो है आज इस पर बात करेंगे कि पानी क्या क्या कैसे कैसे पता चल जाए कि कैसे पानी साफ है, अभी जो हम पानी चाय पानी पी रहे हैं यहाँ पर कैसे इसका आइडिया लगाया जाए और फिर कितनी ज़रूरत है इसकी कि साफ होना चाहिए।
जैसे कि हम पिछले प्रोग्रामों में ये मौजू पे अक्सर बातचीत होती रही है कि हाइजीन और सफाई सुथराई से रिलेटेड जितने भी मौजू हैं, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म के लिए भी, पीने के लिए भी, गिज़ा के इस्तेमाल में भी पानी का इस्तेमाल है। और इसका साफ़ सुथरा होना, इसका आलूदा ना होना, हर किस्म की आलूदगी से इसका पाक होना, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि जैसे कि कुछ तहकीकात से ये पता चला है कि ये देखा गया है कि दुनिया में तकरीबन 18 लाख अमवात होती हैं सिर्फ बच्चों में हर साल,
अच्छा,
अगर उनको आलूदा पानी मैसर हुआ हो तो।
अच्छा,
और अगर हम इसको हटा दें, इस आलूदा पानी को हटा दें, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितनी अमवात को रोक सकते हैं।
अच्छा सही, ये सारी की सारी जो बीमारियाँ पानी से हो रही हैं उसकी वजह से,
उसकी वजह से अमवात से, सिर्फ अच्छा। पानी की वजह और भी बहुत की वजह, बहुत सारी वजूहत हैं जो अमवात में, वो अलग अमवात के
सही।
उसके अलग नंबर्स हैं, तो हम सिर्फ अभी इसी पे मौजू पे रहते हैं। अब किस तरह से पता लगाया जाए इसके, बहुत सारे आपके पास जो लेबॉरेटरी में तहकीकात होती हैं उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हम क्योंकि अपने मौजू को एक फैमिली के लिए बातचीत करेंगे, घर के लिए, कि घर में किस तरह से पता लगाया जा सकता है, तो घर में जब भी आप पानी के इस्तेमाल के लिए लाते हैं, चाहे वो नल से हो, किसी कुएं से लाया जा रहा है या आपकी पाइपलाइन से आ रहा है, उसको बेसिकली ये देख लें कि उसमें किसी किस्म की बू तो नहीं आ रही, उसका रंग
ठीक है,
कि इसमें किसी किस्म का रंग नहीं है, कोई इसका जायका तब्दील हुआ हुआ है।
सही,
तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी मददगार होती हैं कि यह अंदाज़ा लगाने के लिए कि इसमें आलूदगी है या नहीं है।
ठीक है,
तो अगर हमें अंदाज़ा हो जाए कि हाँ इसमें आलूदगी है, या अगर एक और सबसे बड़ा नुकसानदेह ये हो सकता है कि आपने पानी इस्तेमाल किया हो, आपके आपको तकलीफ हुई हो पेट में देखिए, या आपके बच्चों को तकलीफ हुई हो, ये भी एक आंसर आपको मैसर है कि आप इसको भी देख सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा लेबोरेटरीज वगैरह कुछ होती हैं कि मतलब पानी लेके जाएं वो वहाँ पर टेस्ट करें आपके लिए?
जी जी बिल्कुल, हर जगह, हर शहर में इसकी, हर बड़े शहर में इसकी लेबोरेटरी की फैसिलिटी होती है।
ठीक है,
आप अपना सैंपल उसको दे देते हैं।
सही,
लेकिन ये उमूमन एक एज अ फिजिशियन कोई डॉक्टर अपनी फैमिली को ये रिकमेंड नहीं कर सकता।
ठीक है,
क्योंकि इसमें पैसा बहुत चाहिए होता है।
सही है,
इसके लिए फिर टाइम वो लोग लेते हैं, तो हर घराने को हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर का पानी टेस्टिंग कर देख लें कि इसमें आलूदगी है या नहीं है।
ठीक
है, अगर सिर्फ ये रंग बू और जायके को चेक कर लें और अगर उसके इस्तेमाल से अगर किसी को बीमारी हो रही है, तो ये काफी है कि बताने के लिए कि आपका जो पानी है वो आलूदा हुआ हुआ है।
ठीक है सही,
तो अब ये है कि इसके जो इससे बीमारियां हो सकती हैं उसको किस तरह से रोका जाए।
ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बीमारियों की तरफ जाएं, ये मैं पूछना चाहूंगा कि वाटर फिल्टर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इन इनको आप लोग रिकमेंड करते हैं या नहीं?
बिल्कुल, जो घराना इसको मैसर कर सकता है अपने माली हालात के मुताबिक, वो बिल्कुल उसको इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे फवाइद हैं, इसमें बहुत सारी अकसाम है मौजूद हैं, अब कौन सा आपके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसका फायदा है।
फायदा है, ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे अगर आपका पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा तो उसके क्या हल निकाले जा सकते हैं, इस पे जो है आपसे तफसीली तौर पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग चलेंगे हसन के पास और देखते हैं हसन हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और बहुत ही अहम बात की। वैसे दो किस्म की मशीन होती हैं पानी साफ करने की, महंगी और बहुत महंगी।
अच्छा,
तो इन दोनों में से आप इंतखाब कर सकते हैं, और दूसरे रास्ते भी यकीनन डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि पानी का मसला बहुत ज्यादा अहम होता है और हम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इंसान खाने के बगैर ज़िंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ہم لوگ کا فیس بک کا صفحہ آپ چیک کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران، اگر کوئی کمنٹ ہو آپ وہ لکھ سکتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بھیج سکتے ہیں، ای میل یہ سب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر براہ راست ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو ٹیلی فون لائن ہے ہم لوگ کی، اور دوسرا یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کسی پیج کو لائک کر دیں، کسی بات کو لائک کر دیں تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوگی. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کس قسم کے پروگرامز پسند ہیں، اور آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ کون سی چیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں یا نہ کریں. چلتے ہیں خرم کے پاس. خرم، فیس بک کے سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں کے پیج میں تھوڑے دن سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور انشاءاللہ مثبت طرف جا رہا ہے ہم لوگوں کا پیج، تو اس میں اگر ناظرین ہم لوگوں کو بھیجتے رہیں مختلف چیزیں اور مشورے دیتے رہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا.
بالکل ضروری ہے، کیونکہ فیڈ بیک جب تک آپ لوگوں کی نہیں آئے گی تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم جو ہے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں یا برے برے کام کر رہے ہیں فیس بک کے پیج پہ. تو ہمیں بار بار فیڈ بیک دیتے رہیں اور ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے جتنا بہتر بنا سکیں پروگرام کو اور فیس بک پیج کو بہتر بنا سکیں گے. اور ابھی بھی اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اویس سے تو فیس بک آن لائن ہے حسن کے پاس اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ طریقے آپ بتائیں گی کہ اگر پانی صاف نہیں آ رہا تو کیسے اس کو صاف کیجیے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے جو ہے وہ جو ہماری میونسپیلٹی والے ان کو پکڑیں کہ بھائی پانی کو صاف کریں، اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں؟
جی بالکل، پہلی تو توقع یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے محلے کے جو یا آپ کے شہر کے جو میونسپل کمیٹیز تھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو حکومت کے جو بجٹ ہے اور حکومت کی جو سہولتیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھر تک صاف پانی پہنچا سکے. لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے جس علاقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ساؤتھ ایشیا میں، وہاں کچھ حد تک تو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جو پانی آتا ہے وہ اس میں فلٹر سے ہو، لیکن وہ فلٹر پلانٹ خود اتنے شہر سے باہر اور اتنے دور لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اصل جو گندگی اور آلودگی جو پانی میں پیدا ہو جاتی ہے وہ وہاں سے لے کے جو ہمارے گھروں تک آ رہی ہوتی ہے اسی میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں.
یعنی یہ جو آلودگی ہے، یعنی فلٹر پلانٹ موجود ہیں؟
موجود ہیں، وہ کام کرتے بھی ہیں.
مجھے جانتے یہ لگتا، میں مجھے جانتے سمجھتی ہوئی یہ تھی کہ فلٹر پلانٹ ہی نہیں ہے ہمارے اکثر علاقوں میں، کیونکہ
جو بڑے شہر ہیں وہاں تو موجود ہیں. جہاں اگر ہم کسی گاؤں کے زاویے سے اگر بات کریں تو بالکل وہاں موجود نہیں ہے، لیکن جو بڑے اور چھوٹے شہر ہیں ان کے شہر کے باہر یا شہر کے ارد گرد کچھ ایسے فلٹر پلانٹس حکومت کے جو انڈر کام کرتے ہیں وہ ہیں اور وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہر سے اتنا دور ہیں کہ وہ راستے میں ہی پانی میں آلودگی دوران پائپ اور کچھ سیویج لائن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آلودگی مل جاتی ہے اور پھر وہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بارہ یہ تصویر ایک آ گئی ہمارے پاس، یہ بھی تو ماشاء اللہ جو ہے آلودگی کا ایک وہ سینٹر ہے. بالکل، برتنوں میں پانی لایا جاتا ہے، خود جو آلودہ ہوتے ہیں.
بالکل، یہ ایک جس طرح سے تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک یہ جس گاؤں سے یا جس ایریا سے لوگ پانی لینے جا رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ، عموماً یہ کنڈیشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک محلے میں ایک جگہ پہ نلکا لگا ہوا ہے اور کسی دن میں وہ پانی آتا ہے تو وہاں پہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور برتن میں. اب کچھ تو ان کی مجبوریاں ہیں کہ ان کے پاس یہی برتن ہیں، وہ اسی کو پانی سے دھوتے ہیں اور اسی میں استعمال کر لیتے ہیں.
صحیح. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟
یہ اس تصویر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن کچھ یہ اس میں گندگی آلودگی کا پانی اس میں عموماً یہ فیکٹریوں سے نکلتا ہوا پانی اس میں مکس کر دیا جاتا ہے.
یعنی ڈاکٹر صاحب یہ وہی پانی ہے جو ہم کل کو پیئیں گے اور اس میں جو ہے یہ فیکٹری کا ویسٹ جو ہے وہ بھی مکس ہو رہا ہے؟
یہ صورتحال جو حقیقت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے، لیکن کچھ ہم جیسے لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پانی کو استعمال نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجبوراً ان پانی کو استعمال کریں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہی پانی مثال کے طور پر چلیں اگر یہ پانی نہیں بھی ہم پیتے تو اگر اس کے آس پاس ہی، کیوں کہتے ہیں نا بڑا ایک حساب کتاب ہوتا ہے جب آپ نے اگر پانی کا ریزروائر بنانا ہے پانی پینے کے پانی کا، تو اس کے آس پاس آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کس طرح ہے،
ایسے حالات نہ ہو،
ایسے حالات نہ ہو
کیونکہ پانی زمین کے نیچے سے رس کے مل جاتا ہے.
تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا یہ حساب کتاب چیک رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں؟
بالکل نہیں، ہمارے یہاں تو جس طرح سے ریزروائر بنائے جاتے ہیں تو اس میں تو اس طرح سے کچھ چیکنگ نہیں ہوتی ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کو فیسلٹی مواقع ملی انہوں نے وہاں پہ ریزروائر بنا دیا.
ٹھیک ہے،
اور آگے پیچھے فیکٹری والوں کو بھی یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آگے کوئی پینے کا پانی اگر ہے، ان کو بس یہ دیکھنا ہے کہ اپنی پائپ لائن چھوٹی سی کم از کم رکھنی ہے،
آسان طریقے سے
جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے وہاں پہ پھینک دیا پانی، ڈرین لگا دیا.
یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے
اس میں بھی دیکھیں، اگر یہ ایک کسی شہر کے ارد گرد کی نہر ہے جو کہ عموماً اس شہر کو اسی نہر سے پانی مل رہا ہوگا، یا اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد کی جو کچی آبادی ہوں گی وہ اسی نہر سے پانی لے رہی ہوگی,
ٹھیک ہے, بالکل
وہی سیویج کی لائن اس میں مکس ہو رہی ہے.
اچھا,
یہ عموماً اس طرح کی لائن فیکٹریوں سے نہیں نکل رہی ہوتی, یہ کسی علاقے کی سیویج کی لائن ہوگی جو اس میں مکس ہو رہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو یہ بڑا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ چل رہا ہے, سیوریج کا پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ لائنیں جا رہی ہوتی ہیں, یہ کیوں ہے ایسا؟
یہ اصل میں جو آپ کا جب ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے یہ اس وقت آپ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی لائن میں ایک خاص قسم کا ڈسٹینس ہونا چاہیے, اس کے پائپ الگ قسم کے ہونے چاہیے,
ٹھیک,
اس کے پائپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلیں,
بالکل.
لیکن وہ یہ کہ جب ہم کم بجٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں ہماری حکومتیں تو وہ پھر بنا دیتی ہیں, پھر بعد میں جب آگے 5 سال 10 سال کے بعد جو لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں انہیں کم بجٹ میں کام ہونے والے سے شکار ہو جاتے ہیں.
اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب واقعاً بڑا ایک عجیب سا میرے لیے بڑا عجیب سا وہ تھا کہ یہ ہے جی سیوریج کا پانی بھی ساتھ جا رہا ہے اور پینے کا بھی جا رہا ہے اور کہیں تھوڑا سا ان کا سوراخ ہو گیا تو وہ آپس میں مکس
مل جاتا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ جو ہے کہ کس طرح پانی کو صاف کیا جائے گا, بحث جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ بڑا ایک سنجیدہ قسم کا یہ مسئلہ ہے. چلتے ہیں حسن کے پاس. جی
بہت بہت شکریہ, بالکل ایک الگ سی چیز ناظرین کو دکھانے جا رہے ہیں اور وہ ہے حافظ شیرازی کے اشعار. بہت ہی مشہور شاعر تھے, دنیا بھر میں انہوں نے بہت شہرت کمائی, خدا انتقال کے بعد شاعروں کا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ وہ انتقال کے بعد ہی شہرت کماتے ہیں. تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. ڈاکٹر اویس رضا سے ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے, چلتے ہیں ان کے پاس, وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں.
بہت شکریہ حسن. اور جی ڈاکٹر صاحب وقت محدود ہے اور آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ کیسے پانی صاف کیا جائے.
اس کم وقت میں پھر کچھ یہ کہ ہم تھوڑا سا اس میں اپنے موضوع کو محدود رکھیں.
جی جی,
جو عموماً ہر گھر میں تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سروے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے وہ ہے پانی کو ابالنا.
ٹھیک ہے,
یہ بظاہر دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے, بہت مفید بھی لگتا ہے اور سائنٹیفکلی بھی یہ ایک اچھا طریقہ ہے.
صحیح,
لیکن اس میں کچھ مس کنسیپٹس ہیں, کچھ مشکلات ہیں جو لوگوں کو غلط طریقے سے پانی ابال لیتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں اور جب فائدہ نہیں ہوتا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ
یہ صحیح نہیں,
پھر وہ مہنگے طریقے اور کچھ سوفسٹیکیٹڈ طریقوں پہ جاتے ہیں کہ واٹر فلٹر کے پلانٹ لگایا جائے یا مشین لگائی جائے یا پھر اس طرح سے. بیسکلی یہ کہ پانی کو ابالا جائے پہلے تو اس کا صاف برتن ہونا چاہیے. جب پانی ابل جائے, اب جب پانی ابل رہا ہو اس کے بعد وہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی دیر اور اس کو چولہے پہ رکھنا ہے.
ٹھیک ہے,
عموماً 5 منٹ سے 10 منٹ تک اس کو مزید ابلنے دیا.
ابلنا جب شروع ہوا اس سے 5 منٹ 10 منٹ, ٹھیک ہے.
عموماً یہ دیکھا گیا جیسے پانی ابلتا ہے آپ نے چولہا بند کر دیا اور پانی
ختم ہو گیا,
پھر آپ نے دیکھا کہ اب کب ٹھنڈا ہوگا اس کا استعمال کریں. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے, اس کو یہ کہ پانی ابلنے کے بعد 5 سے 10 منٹ اور مزید اس کو دیے جائیں تاکہ یہ صحیح سے اس کے جراثیم جو مختلف قسم کے بیکٹیریا ہیں وائرسز ہیں اس کو یہ ختم کریں اور پھر اس کے لیے پانی کو ٹھنڈا کیا جائے.
ٹھیک ہے,
اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اب کب تک اس پانی کو استعمال کیا جائے.
ہاں یہ بڑا
اور کتنا گرم کرنا چاہیے پانی, کتنا ابالنا چاہیے,
مقدار ہونی چاہیے,
مقدار کتنی ہونی چاہیے. یہ اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر کو یہ 24 گھنٹے استعمال کے لیے رکھا جا سکے.
ہاں 24 گھنٹے بس,
اس سے زیادہ پھر نہ رکھا جائے پانی.
ٹھیک ہے,
کیونکہ پھر وہ اس میں جراثیم دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر جتنی بھی آپ نے محنت کی تھی ابالنے کی وہ سب ضائع ہو جائے گی.
زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بڑا اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. گفتگو جاری رکھیں گے, یہاں پر ہم چلیں گے کچھ حسن بھی جو ہے اہم نکات اور کچھ مزے کی باتیں مجھے نظر آ رہی ہیں, ایل سی ڈی پہ کچھ لے کے آئے ہیں.
بالکل, سفر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خرم ہم لوگ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو بیڈ روم سیٹ اور ڈرائنگ روم صوفوں کے علاوہ باقی ہر چیز ساتھ میں لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر ہم لوگوں کا بس چلے تو وہ بھی ہم لوگ ساتھ میں لے لیں گے.
ٹی وی وغیرہ بھی جو ہے کبھی کبھار جو ہے ساتھ لے لیا جاتا ہے. ہاں
ابھی آج کل تو خیر موبائل میں آرام سے دیکھا جا سکتا ہے, پھر بھی اس کی زحمت کم ہو گئی ہے لیکن ابھی کافی حد تک ہے. تو ناظرین اس کو آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ سامان کم رکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو میں کئی چیزیں بتاؤں گا. ہوتا یہ ہے کہ اکثر موقعوں پر ہم لوگ جب سفر پہ جاتے ہیں تو نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کتنی چیزیں لے جا رہے ہیں. کتنی چیزیں لے جا رہے ہیں سے مطلب یہ ہے کہ کن چیزوں کو آپ کو واقعی ضرورت پڑے گی سفر کے دوران. کوئی فرق نہیں ہے کہ 3 ہفتے کا سفر ہو یا 3 مہینے کا سفر ہو, کوشش کریے کہ ایک ہی مقدار میں چیزیں لیں. اس کے لیے سب سے اہم کام یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک کوئی سوٹ کیس آپ اپنا مقرر کریں کہ اس میں آپ کو لے جانا ہے, کوشش کریں 10 کلو کے اندر ہو. تھوڑا ایک کلو اوپر یا نیچے سے زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ لمٹ اپنے لیے نہیں رکھیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں میزان اپنے لیے نہیں رکھیں گے، تو یقیناً آپ کو پریشانی پیش آئے گی۔ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ساری جب رکھ لیں تو ایک بار سوچیں اور ساری ان چیزوں کو اکٹھا کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑے گی، تمام چیزوں کو گھر سے لے آئیں، پھر اس کے بارے میں دیکھیں کہ واقعی کہ آپ کو سفر میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ذرہ برابر آپ کو شک ہو تو اس چیز کو کنارے رکھ دیں، کیونکہ وہ یقیناً آپ کے کام نہیں آئے گی۔ سفر آپ کا لمبا ہے تو کوشش کریں کہ صابن دو تین مت رکھیں، یقیناً جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آج کل، یعنی حتیٰ آپ بالکل کسی غار میں بھی چلے جائیں گے تو یقیناً وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ٹورسٹ شاپ مل جائے گی جہاں سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ آپ جا کے وہاں کی زبان سیکھ لیں گے کچھ نہیں ہوا تو، اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوں گی۔ ٹوتھ پیسٹ، مختلف اس طرح کی چیزیں یقیناً آپ کو مل جائیں گی بہت ہی آسانی سے۔ خود پیکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے پیک کریں، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ چھوٹی چیزیں یعنی ایک قسم کے کپڑے جو ہیں ساتھ میں رول کر کے رکھیں، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک کیپسول کی شکل میں آپ اس میں اگر رکھیں گے اپنے سوٹ کیس میں تو جگہ بھی کم گھیرے گی اور آپ کو نظر بھی آئے گا آپ نے رکھا کیا ہے۔ ہر چیز کو بہت ہی مناسب مقدار میں رکھیں، کوشش کریں کپڑے جو ہیں بہت زیادہ مت رکھیں، یعنی مثال کے طور پر ہوتا ہے ایک دن کے سفر کے لیے کم سے کم دو تین کپڑے رکھ لیے جاتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے۔ کوشش کریں کہ اتنا سفر آرام سے آپ کریں کہ ایک بیک پیک میں آپ کی ساری چیزیں آ جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اچانک آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہاں پہ کتنا چلنا ہے۔ آج کل ایئرپورٹس پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ دوسرا بیگ اگر آپ کو چیک کرنا ہے، خصوصاً امریکہ یا یورپ میں اگر آپ ہیں، تو وہاں پر دوسرے بیگ تیسرے بیگ کے لیے الگ سے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، تو اگر ایک بیگ آپ ساتھ میں لے چلیں گے تو آپ کے لیے یعنی ہلکا بھی پڑے گا جیب پر اور ہلکا پڑے گا آپ کے پیٹ پر، تو اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک اور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی یاد جو چیز آپ کو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو چیز چھوٹا آپ سوٹ کیس یا بیگ ساتھ میں لے جائیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہر چیز آپ ہی کے سامنے ہوگی اور گم ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ جہاز میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ فٹ ہو جائے گا، ٹرین میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ آرام سے اپنے حتیٰ پیر پہ رکھ سکتے ہیں، کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اچھا، مختلف کھانے جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں، خصوصاً یہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ زیادہ ان چیزوں میں پھنسی رہتی ہے، یوں کہیں کہ باہر کا کھانا کھائیں یا گھر کا کھانا کھائیں۔ باہر والے میں یہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یقیناً بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت یعنی وہ جو آپ کو جیب خرچہ ملتا ہے اگر اس کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں تو بہترین کام یہ ہے کہ آپ گھر میں آ کر یا ہاسٹل میں آ کر وہاں پہ تھوڑا بہت کھانا پکانا سیکھ لیں۔ شروع میں کچھ پتہ ہی کیا چیز نکلے گی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے آپ کھانا پکانا سیکھ جائیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ورائٹی آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگی، ہوتا یہ ہے کہ ریسٹوران میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو مختلف سبزی ترکاری یہ سب جو استعمال بھی اگر وہ لوگ کریں تو اس میں جو سڑا ہوا حصہ ہے وہ لوگ الگ نہیں کرتے، اسی کے ساتھ پکاتے ہیں یا اسی سینڈوچ میں آ کر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ بالکل تازہ چیز استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کھانا آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ بالکل صحیح طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ مختلف فاسٹ فوڈز ہوتے ہیں یا جو مختلف ریستورانوں میں کھانے بنائے جاتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، حتیٰ اس کو بہت ہی خوبصورت سا رنگ دینے کے لیے، جو آپ کو مرغی کا بالکل اسی مرغی کے کلر کا رنگ آپ کو نظر آتا ہے، گوشت کا بالکل سرخ رنگ نظر آتا ہے، یہ اس کی سرخی نہیں ہوتی بلکہ کیمیکل مادوں کی سرخی ہوتی ہے جو بعد میں دوسری شکلوں میں نکل آتی ہے۔ اس میں فائدہ اور یہ ہے کہ آپ گھر میں دوسروں کے ساتھ آرام سے کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کا گھرانہ اور مضبوط ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ پروٹینز اور جو مناسب مقدار میں چیزیں آپ کے بدن میں پہنچنی ہیں وہ آپ کے بدن میں پہنچ جائے گی، اضافی چربیاں آپ خود بخود استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ریستورانوں میں بہت بھرپور طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں، تو گھر میں آپ یقیناً اتنے مقدار میں استعمال نہیں کریں گے۔ ریستورانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ مجبور ہیں اس کو کھانے پر، معاف کیجیے گا، ہاں تصویر آ گئی، مجبور ہیں آپ اس کو کھانے پر، اور اگر بہت ہو گیا تو آپ ساتھ میں لے آئے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ موٹاپے کا بہت جلد شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے بھی گھر میں کھانا پکانا بہت ہی اچھا ہے اور آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں खाना वो करने के लिए टाइम आपका उतना ही सर्व होगा उसमें, लेकिन अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो ट्रैफिक और तमाम चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना होगा, टाइम भी आपका ज़ाया ज़्यादा हो सकता है। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन, बहुत मुफीद आपने बातें की। डॉक्टर साहब वक्त बिल्कुल महदूद है, सिर्फ हमें ये बता दें कि और क्या क्या मेथड है पानी साफ़ करने के।
और जो इस्तेमाल पानी को आलूदगी से पाक करने के जो तरीके हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ख़वातीन बहुत आसानी से इसमें यानी पानी को उबालने से भी कम जहमत इसमें है और बहुत अच्छा तरीका है, वो ये कि किसी ऐसी बोतलों में पानी भर लें जो कि ट्रांसपेरेंट हो,
ठीक है,
और उसको सूरज की रोशनी में रखा जाए,
ठीक है।
ये बहुत एक नहायत ही आसान तरीका है, सस्ता है,
सही है।
इसमें किसी किस्म की कोई आर्टिफिशियल मेथड नहीं है,
ठीक है।
इसमें नेचुरल जो सूरज की रोशनी आएगी
उसी से
वो पानी
ठीक
गर्म होके आपकी जो बैक्टीरिया है जो आलूदगी उसे साफ कर देगा।
और कोई डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई और मेथड है
जो घरों में उमूमन इस्तेमाल किया जा सकता है? वो ये कि इसको एक मलमल पानी को साफ वो उबले हुए पानी को मलमल के कपड़े से
फिल्टर
किया जा सकता है।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत के साथ बिल्कुल वक्त हमारा जो खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपने जो असल चीज़ थी पानी को उबालना और उसके मेथड के बारे में बता दिया हमारे नाज़रीन को। इंशाल्लाह जो है अगले प्रोग्राम में हम आपको दावत देंगे ताकि जो है और जो दूसरे मेथड हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।
शुक्रिया
जी हसन,
शुक्रिया खुर्रम। और डॉक्टर साहब हम लोग का रब्ता हमारे साथी बता रहे हो गए दिल्ली स्टूडियो से, चलते हैं ब्रेक लेते हैं उसके बाद आपके। एक चीज़ जहन से निकल गई बताना वो सफ़र के बारे में, वो ये है कि जो तजुर्बाकार होते हैं वो आपको मसल 8वीं दफ़ा मिसाल के तौर पर जा रहे हैं सफ़र पर, तो यकीनन वो आपसे नहीं कहेंगे सामान ज़्यादा ले जाओ बल्कि कम से कम ले जाओ। एक अभी अपना तजुर्बा बता रहे थे खुर्रम भाई, और अभी कुछ दिन पहले मैं सफ़र पे गया था, एक बैकपैक लिए हुए था, एयरपोर्ट से सबसे पहले मैं बाहर निकला फ्लाइट से, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मैंने फतह कर ली है।
यकीन माने कि मैं मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जब मैं पहली बार जब मुझे ये पता चल गया कि कम सामान ले जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि ये भी एक खुदा की नेमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है कि मैं कम सामान ले
लूं।
बहुत तंग होता बंदा,
वरना हम लोग नाज़रीन का क्या होता।
बिल्कुल ये बात,
अगर अकल का मसला हो जाता नाज़रीन का हम लोग क्या होता। तो चलते हैं नाज़रीन डॉक्टर अतिया निशात साहिबा के पास, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम
डॉक्टर साहिबा, एक तो मैं नाजरीन से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वक्फा पड़ता है, ये बहरा सैटेलाइट के जो रेज हैं वो देर में पहुँचती हैं। इसके एक जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ इस हवाले से, आजकल सर्दियाँ बहरहाल ठीक ठाक पड़ रही हैं, इधर उधर अमरीका में तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान और ईरान में तो यहाँ पर भी अपने उरूज पर है सर्दी, इस सिलसिले में हम लोग खाना कैसे खाना चाहिए, किन खानों का हमें इंतखाब करना चाहिए?
सर्दी के लिहाज से जहाँ तक खाने का सवाल है तो हमारे घरों में इसका बहुत शुरू से ही ख्याल रखा जाता है और ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, दादा नाना और उससे भी पहले लोग, सर्दी आई नहीं कि किस्म किस्म के खाने बनने शुरू हो जाते हैं, वो हलीम नहारी हो गई और पाए बन रहे हैं और टिक्का बिरयानी। बिलाशुबा ये सारे जो खाने मैंने बताए ये गर्म तासीर के होते हैं, आप अपने घरों में भी देखेंगे, आपके जो हाउस होल्ड में गौर किया होगा कि गर्मियों के मौसम में ये खाने थोड़े कम बनते हैं, कहते हैं कि गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, या मछली वगैरह या जो सी फूड होता है उसका इस्तेमाल में कदरे कम हो जाता है गर्मी में, और सर्दियाँ आते ही ये सारी चीज़ें खूब फटाफट बनने लगती हैं और हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, जो कि बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है, जो मीट का जो गोश्त का प्रोटीन होता है और मछलियों का प्रोटीन होता है, ये गर्म तासीर का होता है, जिस्म को ग़िज़ाइयत देने के साथ साथ ये गर्मी भी मुहैया कराता है। और इसके अलावा जो इसमें मसाले पड़ते हैं जैसे लौंग हो गई, स्याह मिर्च हो गया और भी इस तरीके के जो मसाले होते हैं, इनकी भी तासीर गर्म होती है और इससे भी हमें गर्मी मिलती है जिसमें। तो जहाँ तक गर्मी में खाने का सवाल है तो वो ऑलरेडी हम काफ़ी इस पर कोई कमी नहीं कसर नहीं छोड़ते और खूब खाने को एंजॉय करते हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पे तब पैदा होने लगती है कि जैसे अब पहले के ज़माने में जैसे मैंने कहा कि लोग ज़्यादा इस तरीके का खाना खाते थे और उसी हिसाब से काम भी करते थे और उसको बर्न करते थे कैलोरीज और उसको ख़त्म करते थे। अब क्या क्या है कि हमारा काम तो वही, हम गर्मी में भी काम करते हैं, वही हम सर्दी में भी काम करते हैं, और ना ही सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी का मुकाबला करना होता है कि हम ठंड में बाहर घूम रहे हैं या कुछ ऐसा कि हमें जिस्म को बहुत ज़्यादा हरारत देने की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जब फरवरी और मार्च आता है और जब हमारे गर्म कपड़े उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी वेस्ट लाइन, हमारी कमर किस कदर फैल चुकी है, चौड़ी हो चुकी है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि गर्म सर्दियों में किस किस्म की ग़िज़ा ली जाए जिससे हमारा वज़न भी ना बढ़ने पाए बहुत ज़्यादा और हमें हमारे जिस्म को हरारत भी मिलती रहे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस, यानी जो सारे खाने हम नारी तिक्का पाए ये सब बहरहाल तो छूट तो सकते नहीं और अच्छे भी हैं, खाने भी चाहिए सर्दियों में, लेकिन इसमें एक कंट्रोल यानी एक महदूद इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हफ्ते में 3-4 बार भी अगर खा लिया तो भी ये बहुत ज़्यादा है, अगर इसको और भी कम करें तो बेहतर है। और इसके अलावा जो सर्दियों में मौजूद दूसरी चीज़ें हैं जिनको हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं, जैसे फल वगैरह तो बहुत कम हो जाता है सर्दियों में, हमारे घर में ही भी ये रवाज है कि केला मत खाओ या सेब बच्चों को नहीं देते इस तरीके के फल के, वो ठंडे होते हैं और गले में खराश हो जाएगी या कुछ इस तरीके की बातें, जबकि ये बिल्कुल एक गलत फहमी एक तरीके की। बल्कि जो ये देखा गया है कि बच्चे या बड़े भी अक्सर बार बार कोल्ड और कफ और फ्लू का शिकार होते हैं सर्दियों में, वो इन चीज़ों से दूर रहने की वजह से होते हैं। अगर हम अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करें, जैसे मिसाल के तौर पे संतरा हो गया या कीनू, वो भी एक उसी का फॉर्म है, वो हो गया, तो अगर हम उसको रोज़ एक खुद भी खा रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, एक ज़्यादा नहीं, तो उससे इस कदर विटामिन सी हमें मिलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी यानी हमें बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। और उसके अलावा आलू, जिसको हम सर्दियों में बिल्कुल ही किनारे रख देते हैं कि आलू तो जी खाना ही नहीं है, आलू बिलाशुबा ज़्यादा उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे भी मोटापा बढ़ता है, लेकिन अगर हम फिर वही मैं कहती हूँ कंट्रोल मकदार में, मतलब थोड़ी समझ बूझ के आलू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें 25 से 29% यानी 25 से 29% तक की हमारी जो रोज़ की ज़रूरत है वाइटामिन B6 और वाइटामिन सी की, वो पूरी होती है। और अगर ये हम इंश्योर कर लें, यानी हम ये इस चीज़ को कर लें कि बच्चे को हम इतनी मकदार में ये वाइटामिन B6 और वाइटामिन सी दे रहे हैं, तो यकीन जानिए पूरा जाड़ा निकल जाएगा, सर्दियाँ निकल जाएंगी और वो बीमार नहीं पड़ेगा। और आलू के हवाले से एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी आलू हल्का सा बैगनी होता है एक तरफ से, और हम उसको घर में काट के निकाल देते हैं, बहुत से लोगों को लगता है जहरीला है ये, खतरनाक है, जबकि वो जो बैगनी या नीला सा या सुर्खी मायल रंग हो जाता है आलू का, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है एंथोसायनिन, उसकी वजह से होता है, और वो आलू की गजाइत को और बढ़ा देता है, बल्कि उससे वो हार्ट प्रोटेक्टिव यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से भी बचाने की उसमें ताकत आ जाती है।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। एक जो सवाल है खुर्रम, एक यानी काफ़ी मसला भी आजकल के दौर में वो ये है कि सर्दियों में घर से कम निकला जाता है और ऐसे ही खुद उसमें रोशनी कम होती है, धूप कम होती है, और धूप होती भी है तो उसमें जान बज़ाहिर नहीं होती कि उसमें गर्म कर सके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सूरज की रोशनी की ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो ग़िज़ा के ज़रिए हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं?
ये बहुत अहम नुक्ता हसन साहब आपने उठाया है कि सर्दियों में मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत धूप भी निकलती है ना तो भी हम बाहर निकलना बहुत अवॉइड करते हैं कि नहीं जाना है बाहर, हवा लग जाएगी, और बच्चों को तो बहुत ही हम ज़्यादा मना करते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे कोल्ड कफ और ज़्यादा बढ़ता है। जितना हम अपने घर को बंद रखेंगे और जितना पैक्ड रखेंगे ना, उतने ही हमें ये जो एलर्जेंस होते हैं एक तरीके के, वो और ज़्यादा माहौल में पैदा होते रहते हैं, हम उसी को इनहेल उसी से में सांस लेते रहते हैं, और ये हमें बीमार कर सकते हैं। और ख़ासकर वो बच्चे जो एस्थमेटिक हैं, मतलब एस्थमा में मुबतला है, उनके लिए तो ये बेहद खतरनाक सिचुएशन है कि आप उनको मुस्तकिल घर में पैक रखते हैं, घर में बंद रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो मैंने जो कहा कि इम्यूनिटी यानी आपको जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ानी पड़ेगी, वो एक मस्ट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए जैसे मैंने कहा विटामिन सी का इंटेक यानी विटामिन सी के को लेना बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हो गया आपका संतरा हो गया और कीनू हो गया और बहुत सी सब्जियाँ हैं जिसमें विटामिन सी है, जितनी हरी सब्जियाँ हैं सब में विटामिन सी है, क्योंकि बच्चा उसको नहीं खाएगा लेकिन आप उसको सूप वगैरह बना के दे तो शायद वो उसका इस्तेमाल करे और विटामिन सी उसको मिले। इसके अलावा एक चीज़ है कि चाहे उसको पूरे कपड़े पहना के या पूरा हिफाजत के साथ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर ज़रूर लेके जाएं, चाहे धूप ना भी निकली हो, फिर भी माहौल में बहरहाल सूरज तो है ही, वो किरण नहीं, मतलब आपको रोशनी वो तेज़ सन रेज नहीं मिल रही है, लेकिन बहरहाल सूरज तो अपनी जगह मौजूद है, आप ज़रूर बाहर जाएँ, थोड़ी देर उसको पार्क में खेलने दें या ख़ुद भी बाहर वॉक के लिए जाएँ, घर में महदूद होकर बिल्कुल ना बैठें क्योंकि इससे आप बीमार पड़ेंगे उल्टा, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला।
डॉक्टर आतिफ निषाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम नुकात की तरफ आपने मुख्तसर से टाइम में इशारा किया। माजरत के साथ वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया।
आपसे इजाजत चाहते हैं। जी नाज़रीन, बहरहाल आवाज़ इंशाल्लाह के पहुंच गई होगी आखिरी हम लोगों की, और ये बताते चलें कि अगले हफ्ते का मौजू हम लोग जो रख रहे हैं वो इस हवाले से कि दूसरों का एहतराम करना
बहुत अच्छा मौजू है।
और सबसे पहले यानी हफ्ते के दिन
जी हम लोग जो है हफ्ते के दिन बात करेंगे, हमारा हफ्ते के दिन जो है हमारा पूरा दिन, उस दिन हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर बात कर सकें कि हमारी जो माहौल है, कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं उनका भी एहतराम करना हम लोग सीखें। उसमें दरख्त है, उसमें पानी है, उसमें बहुत सी सारी चीजें गोदी पाई
है, जो माहौलियात
का बिल्कुल हफ्ते के दिन। और इसी सिलसिले में हमने जो अपने माहिर हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे और बात करेंगे, मोहम्मद दरवेश साहब हैं, वो माहौलियात के माहिर हैं, उनसे भी इसी मौजू पर बात करेंगे।
हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।